हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन आंशी को लेकर आर्टिस्टिक जा रहा था। पार्टी में विधिक उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आया था। तब से वो डरी हुई थी। पूरे रास्ते आंशी ने कुछ नहीं कहा। वहां पहुंचते ही अमन ने गाड़ी पार्क की और आंशी को गोद में उठाकर ऑफिस के पीछे की तरफ बनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट डायरेक्ट जाकर ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रुकी, जहां अमन का सीक्रेट हाउस था। आंशी वहां पहली बार आई थी, इसलिए वो उस जगह को हैरानी से देख रही थी। वहां आकर अमन ने उसे नीचे उतारा। आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, बोलते हुए अमन ने आंशी को गले लगा लिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। नो, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और उसके सामने कमजोर पड़ गई, आंशी ने रोते हुए कहा। अमन ने उसे उसके बालों में हाथ फेर कर कहा, नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, ये पहली बार था, फिर भी तुमने किया। आंशी को शांत कराते हुए अमन का ध्यान उसकी पीठ पर गया, जहां विधिक के टाइटली पकड़ने की वजह से उसकी अंगुलियों और नाखून के निशान बने हुए थे। वो सब देखने के बाद अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। दर्द हो रहा होगा, अमन ने उसकी बैग को सहलाते हुए कहा। फिर वो आंशी से अलग हुआ और उसके हाथ को पकड़ा, जहां विधिक ने कट लगाया था। मैंने नहीं सोचा था वो तुम्हें भी चोट पहुंचाएगा, अमन ने हैरानी दिखाते हुए कहा। वो बहुत गुस्से में है, आंशी ने जवाब दिया। वो विधिक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, तो उसने बात को बदलते हुए कहा, ये घर तुमने कब बनवाया? तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है, पर अच्छा है। बोलते हुए आंशी घर को देखने के लिए आगे बढ़ने लगी कि तभी अमन ने उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। मेरा घर नहीं आंशी, हमारा घर, और दिल के दर्द को छुपाने के लिए ध्यान मत भटकाया करो, अमन बोला। कभी कोई होता ही नहीं है जिसे अपने दिल का दर्द बता सकूं, आंशी की आवाज में दर्द था। कभी कोई नहीं होता होगा, पर अब से मैं हमेशा रहूंगा, अमन ने जवाब दिया। उसने आंशी को खुद से अलग किया और कहा, चलो आओ, फ्रेश हो जाओ। मेरे पास दूसरे कपड़े? आंशी बोलते को हुई, तभी अमन ने उसके होठों पर अंगुली लगा दी। अमन ने आंशी का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में ले गया। उसने बाथटब में हॉट वाटर फिल किया। तुम नहा लो, थोड़ा बेटर फील होगा, मैं बाकी के अरेंजमेंट्स देखता हूँ, कहकर अमन उसे वहीं छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद आंशी ने बाथ लिया। वहाँ उसके कपड़े नहीं होने की वजह से उसने टॉवल लपेट रखा था। वो वापस रूम में आई तो अमन वहाँ नहीं था। अमन के वहाँ नहीं होने से आंशी की आंखों में विधिक के पास होने का जो डर छिपा था, वो अब बाहर आ रहा था। वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। क्यों कर रहे हो तुम ये विधिक, प्लीज लीव मी। आंशी जमीन पर बैठकर रो रही थी कि तभी अमन वहाँ पर आया। वो आंशी के पास बैठ गया और उसे गले लगाकर चुप करने लगा। मैंने कहा ना, मैं हूँ, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो वो कभी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। आई प्रॉमिस, मैं कल ही तुम्हें यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह पर भेज दूंगा। अमन की बात सुनकर आंशी उससे अलग हुई और कहा, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अमन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने आंशी को उठाकर बेड पर लेटाया। चलो उल्टा लेट जाओ ताकि तुम्हारी बैग पर ऑइंटमेंट लगा सकूं। पर मैंने कपड़े, आंशी बोलते हुए रुक गई, वो हिचकिचा रही थी। तुम लेटो तो सही, अमन ने कहा। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और उल्टा लेट गई। उसके लेटते ही अमन ने ब्लैंकेट उढ़ाया और उसका टॉवल निकाल दिया। अब बस आंशी की बैग दिख रही थी। अब भी बैग दिख रही है तुम्हें? मैं कर लूंगी, आंशी ने हिचकते हुए कहा। अच्छा, तुम बैकलेस ड्रेस पहन सकती हो और अब अपने ही हस्बैंड के सामने शर्म आ रही है? तुम्हारा हाथ पीछे नहीं जाएगा तो मैं कर रहा हूँ, करने दो, अमन ने सार्कास्टिक वे में कहा और उसके पास आकर बैठ गया। वो धीरे धीरे आंशी के जख्मों पर दवाई लगा रहा था। तुम 6 महीने बाद मुझे छोड़ दोगे ना? अचानक आंशी ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। और लावण्या? आंशी ने पूछा। लवी को मैं समझा दूंगा। पहले तो तुम उसे लवी बुलाना बंद करो, आंशी चिढ़कर बोली। फिर उसने अपना टोन सामान्य किया और आगे कहा, अच्छा तो तुम हमेशा मेरे साथ मेरे हस्बैंड के तौर पर रहोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे और फिर प्रोटेक्ट करने के लिए बस एज अ गार्ड मेरे साथ रहोगे? नहीं, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा, अमन ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। आंशी बच्चों की तरह उससे हर एक चीज अच्छे से कंफर्म कर रही थी। अमन के मुंह से शादी ना तोड़ने की बात सुनकर आंशी खुश हो गई और जल्दी से उठकर अमन की तरफ देखकर बोली, प्रॉमिस करो, अपनी एक्साइटमेंट में आंशी ये भूल गई उसने कुछ नहीं पहन रखा। वहीं उसके पलटते ही अमन ने जल्दी से अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया तो वहीं आंशी भी वापस लेट गई। कुछ पलों तक उनके बीच एक अजीब चुप्पी छाई रही। फिर आंशी ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुमने कुछ देखा तो नहीं? तुमने कोई कमी रखी कुछ ना दिखाने में? अमन ने तंस कसा। आंशी ब्लश कर रही थी। सिचुएशन ऑकवर्ड हो उससे पहले वो जल्दी से बोली, हाँ तो तुमने ही तो कहा कि हम हस्बैंड वाइफ बनकर रहेंगे तो ये सब। आंशी हड़बड़ाहट में कुछ भी उल्टा सीधा कहती उससे पहले अमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। तुम्हें तो बात संभालनी भी नहीं आती, चलो आराम करो, सुबह बात करेंगे। अमन उठकर जाने लगा तभी उसे रोकने के लिए आंशी फिर से उठी। इस बार उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आंशी बिस्तर पर बैठे बैठे बोली, अरे रुको तो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, तुमने प्रॉमिस किया है। फ्रेश होकर आ रहा हूँ, चुपचाप सो जाओ, अमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। बाहर आते ही अमन ने बड़बड़ाकर कहा, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। वो आंशी के बारे में सोच रहा था तभी उसके फोन पर मैसेज आया। वो लावण्या का मैसेज था जिसे देखकर अमन की स्माइल गायब हो गई और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे।